मित्रों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी कार्यक्रम लौटते परिंदे। आइए अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आपको अवध ले चलते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत के सभी 29 राज्यों और 7 केंद्र प्रशासित क्षेत्रों में लखनऊ एक ऐसा शहर है जहां की राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ने उन सभी ऐतिहासिक स्थलों की कला और पुरातत्वों के मोल को फिर से स्थापित करने की कोशिश की है। और इस कोशिश की शुरुआत हुई लखनऊ के बड़ा इमाम बाड़ा से। इस कहानी को भेजा है हमारे भारत के संवाददाता शिवनाथ झा ने। और अपनी इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए हम चर्चा करेंगे लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार अंशुमान शुक्ल जी के साथ, जो कि लखनऊ से बहुत ही लगाव रखते हैं और उसके उतार चढ़ाव के इतिहास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। शिवनाथ जी कहते हैं कि लखनऊ हमेशा से ही एक बहुसांस्कृतिक शहर रहा है और यहाँ के नवाबों द्वारा शिष्टाचार, खूबसूरत बागों, शायरी, मौसीकी और बढ़िया खानों का हमेशा बढ़ावा हुआ है। लखनऊ को नवाबों के शहर, स्वर्ण नगर, शेराज हिंद के रूप में भी जाना जाता है। आज का लखनऊ एक जीवंत जागता हुआ शहर है और भारत के तेजी से बढ़ रहे गैर महानगरों के शीर्ष 15 शहरों में आता है। लखनऊ में हिंदी और उर्दू दोनों ही बोली जाती हैं, लेकिन उर्दू को यहाँ सदियों से खास अहमियत मिली है। स्वाधीनता संग्राम के दौरान जब दिल्ली खतरे में पड़ी, तब बहुत से शायरों ने लखनऊ का रुख किया। तब उर्दू शायरी के दो ठिकाने हो गए, दिल्ली और लखनऊ। जहां दिल्ली सूफी शायरी का केंद्र बनी, वहीं लखनऊ गजल, विलासिता और इश्क मुश्क का केंद्र बन गया। नवाबों के काल में उर्दू खूब पनपी और भारत की तहजीब वाली भाषा के रूप में भी उभरी। यहाँ बहुत से हिंदू कवि और मुसलमान शायर हुए जिन्होंने उर्दू शायरी और लखनवी जुबान को नई ऊंचाइयां दी। लखनऊ के समाज में नवाबों के वक्त से ही पहले आप वाली शैली समाई हुई है। ये तहजीब यहाँ दो बड़े धर्मों के लोगों को एक जैसी तहजीब में बांधती है। ऐतिहासिक नजर से लखनऊ प्राचीन कोसल राज्य का हिस्सा था। ये भगवान राम की विरासत थी जिसे उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को समर्पित कर दिया था और शायद इसीलिए इसे लक्ष्मणावती, लक्ष्मणपुर या लखनपुर के नाम से भी जाना गया, जो बाद में बदलकर लखनऊ हो गया। लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा 17वीं शताब्दी की वास्तुकला और नवाबी जमाने की इमारतों के सुरक्षा इंतजाम संबंधी निर्माण का एक बहुत बड़ा शानदार नमूना है। गोमती नदी के किनारे बने बड़े इमाम बाड़े में कई फीट चौड़ी दीवारें हैं। दीवारों में गलियारे हैं, गलियारों में दसियों दरवाजे हैं, सैकड़ों झरोखे हैं जो जानने वालों से कुछ छुपाते नहीं और देखने वालों को कुछ दिखाते भी नहीं। इमामबाड़ा की मोटी दीवारों के कान भी हैं जो कहीं भी होने वाली हल्की सी आहट दूर तक सुन लेते हैं। कहते हैं कि यहाँ की भूल भुलैया और शाही बावड़ी से बहुत सी सुरंगें निकलती हैं जो लखनऊ से बाहर दूसरे राज्यों तक जाती हैं, और इन्हीं में कहीं दफन है नवाब असफुद्दौला का बेमिसाल खजाना जिसका राज आज तक कभी किसी को नहीं मिला, शायद आपको मिल जाए। आइए बातें करें अंशुमान शुक्ल के साथ। तो आइए दोस्तों, अब और जानकारी प्राप्त करते हैं बड़ा इमाम बारा के बारे में वरिष्ठ पत्रकार और इतिहास की स्मारकों की बहुत अच्छी जानकारी रखने वाले श्री अंशुमान शुक्ल से। तो नमस्कार अंशुमान जी।
जी नमस्कार।
हमें इमाम बाड़ा के बारे में बताइए कि इसकी स्थापत्य कला कैसी है और इसका निर्माण कब हुआ, किसने किया?
देखिए, 1985 में इमाम बाड़े की नींव रखी गई। 1985 में इसका निर्माण शुरू किया गया और इसके निर्माण के शुरू होने के पीछे भी एक बड़ा रोचक किस्सा है। उस समय अवध अकाल से गुजर रहा था, बड़ा भयानक सूखा अवध में पड़ा हुआ था जिसकी वजह से लोगों को खाने के लाले पड़ गए थे। तो नवाब आसिफुद्दौला ने एक मॉन्यूमेंट शुरू किया, क्योंकि इसके पहले तक जब अगर आप इमामबाड़े को देखिए तो इमामबाड़े के ठीक बगल में रूमी दरवाजा है और इमामबाड़े के दरवाजे के ठीक सामने नक्कार खाना है। तो ये तीनों एक साथ बनाए गए मॉन्यूमेंट्स हैं, और इस मॉन्यूमेंट्स को बनाने के पीछे का उद्देश्य ये था कि सवेरे आके मजदूर, गरीब मजदूर इसमें इस दीवार को बनाते थे इसकी, और शाम को जो अमीर मजदूर होते थे वो पर्दे में, वो मजदूर जो वो लोग जो अमीर थे लेकिन बहुत ज्यादा फांका परस्ती के दौर से गुजर रहे थे, उनके लिए यहाँ पर रात की व्यवस्था होती थी, वो रात में आते थे और दीवार गिरा दिया करते थे। और इसके पीछे सिर्फ एक कारण ये था कि अवध की जो आवाम है उसको भीख मांगने की से बचाने के लिए नवाब आसिफुद्दौला ने ये मुकद्दस काम किया था, और इसके एवज में लोगों को खाना दिया जाता था, बिरयानी के बड़े बड़े डेग चढ़ाए जाते थे, इसके अलावा और तमाम तरीके की सुविधाएं उनको दी जाती थी ताकि वो मेहनत कश रहें और अवध में नवाब आसिफुद्दौला के राज में वो भीख ना मांगे। इसके लिए इस आसिफी इमाम बाड़े को बनाया गया, और इस आसिफी इमाम बाड़े को बनाने के पीछे जो उसमें ना तो सीमेंट थी, ना आरसीसी थी, ना सरिया थी, तो इसमें उड़द की दाल,
अच्छा,
और बेल का जो गूदा होता है वो, सुर्खी और चूना इसको मिलाकर, गन्ने का रस इसको मिलाकर वो एक अलग तरीके का मसाला तैयार करते थे। और स्थानीय पतली लखौरी, खास बात ये है आसिफी इमाम बाड़े में, आसिफी इमाम बाड़े में कोई भी एक चीज बाहर की नहीं है, नवाब आसिफुद्दौला ने उन्हीं चीजों का इस्तेमाल इसमें करने, उन्हीं चीजों को तरजीह दी जो स्थानीय थे, जो आसपास बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट पर एक बड़ा असर पड़ा। हालांकि लोगों का कहना है कि उस समय भी काफी पैसा लगा आसिफी इमाम बाड़े को बनाने में। इसके अगर आप आसिफी इमाम बाड़े के जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं तो सामने हवा महल दिखता है, बिल्कुल जयपुर की तर्ज पर वो हवा महल है। उस हवा महल में आप किसी भी एक किनारे पर जाकर, किसी भी एक चबूतरे पर बैठ जाइए, और गर्मी हो, हवा बिल्कुल भी ना चल रही हो, तो उनके झरोकों से, उनकी झंझरियों से निकलती हुई हवा आपको महसूस होती है, और उस जब आप हवा महल के दरवाजे से अंदर घुसते हैं तब आपको दिखता है सामने भूल भुलैया का एक बड़ा सा साम्राज्य, जिसकी 50 मीटर लंबी छत बिना किसी पिलर के लगाई गई है, और उस 50 मीटर में ना कहीं कोई जोड़ है, ना कहीं कहीं कोई गर्डर है। ताजुब इस बात का है, आज भी बड़े से बड़ा आर्किटेक्ट इस विश्व का उसको देख के हैरत में पड़ जाता है कि आखिर 50 मीटर की ये छत बिना किसी बेस के उस समय तैयार कैसे कर दी गई।
वाह, ये तो आपने नई बातें बताई कि खाद्य पदार्थों का भी इस्तेमाल किया गया, इसका भी अर्थव्यवस्था पर जरूर असर पड़ा होगा। लेकिन भूल भुलैया के बारे में हमें पता नहीं था कि वहाँ इतनी बड़ी भूल भुलैया है, और बिना बेस के शिल्पकारों ने इस तरह का एक बहुत बड़ा कक्ष और हॉल बनाया था। तो और क्या अनजानी बातें हैं इमामबाड़ा की?
देखिए, इमामबाड़े से को देखिए, अगर आपके समय अभी तो एक बड़ा रोचक प्रसंग हुआ उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर जिस दिन वैलेंटाइन डे था उस दिन से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पर्यटन फेस्टिवल शुरू किया टूरिज्म को लेकर, और उस पर्यटन फेस्टिवल में उन्होंने किया क्या कि वो एयर बलून्स जो थे, हॉट एयर बलून्स, उसमें नीचे दुलची में बैठे हुए लोग अवध को जब ऊपर से देख रहे थे, और उस अवध में ऊपर से जब ये इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा और सतखंडा और नकार खाने से लेकर पुराना अवध जब झांक रहा था, बड़ी बड़ी फोटोग्राफ्स में जब देखने को मिला तो वो अद्भुत नजारा था वो अपने आप में देखकर। अगर आप इमामबाड़े की बात करते हैं, जैसे आप इसके अंदर जाते हैं तो इस इमामबाड़े को बनवाने के पहले आखिर ये अब एक सवाल उठता है कि आखिर आसिफुद्दौला के समय तक अवध की सीमा कहाँ थी, मतलब लखनऊ था कहाँ तक। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो है वो पहले मच्छी भवन हुआ करता था, वहीं पर आसिफुद्दौला रहते थे, और वहां पर करीब 26 बड़े दरवाजे थे। उन 26 बड़े दरवाजों पर हर दरवाजे के सामने दो मछलियां होती थी, क्योंकि मछलियों को शुभता का प्रतीक माना जाता था। तो इन 26 (26×2=52) तो इसको मच्छी भवन कहते थे स्थानीय लोग, जिसको बाद में मच्छी भवन कहने लगे लोग। लखना पासी एक आर्किटेक्ट था जिसके लिए कहा जाता है कि लखना पासी ने इसको बनवाया, और लखना पासी ने इसको बनवाया उसके बाद लोगों का ये भी मत है कि जैसे और लोग कहते हैं कि लखनऊ राम के छोटे भाई लक्ष्मण के नाम पर बनवाया गया, तमाम तरीके की इसको लेकर चीजें चल रही, लेकिन लखना पासी भी एक प्रबल दावेदार हैं जिनके लिए लोग कहते हैं कि इनके नाम पर लखनऊ का नाम रखा गया।
बहुत ही सुंदर और रोचक आपने बात बताई है।
ये आसिफुद्दौला के लिए एक और चीज कही जाती है, आसिफुद्दौला बहुत शौकीन तबीयत के नवाब थे। आसिफुद्दौला के पास घोड़ों का अद्भुत अस्तबल था। शायद ही इस विश्व का कोई ऐसी घोड़े की प्रजाति हो जो आसिफुद्दौला के पास ना हो। आसिफुद्दौला बड़े फिट हुआ करते थे अपने जमाने के दौर में, लेकिन खाने पीने के इतने ज्यादा शौकीन और प्रयोगवादी थे कि एक दौर ऐसा आया कि आसिफुद्दौला घोड़ों पर बैठ नहीं सकते थे, शरीर का वजन इतना ज्यादा हो गया था।
अच्छा।
आसिफुद्दौला ने शीश महल बनवाया। आसिफुद्दौला ने यहाँ मतलब जो जहाँ से अवध की सीमा समाप्त होती थी, ये रूमी दरवाजे और नकार खाने के आसपास के, यहाँ से करीब 10 किलोमीटर आगे लामाटीनियर का जो इलाका है, बीबियापुर जो गांव था वो बिल्कुल जंगल हुआ करता था, वहां पर उन्होंने बीबियापुर कोठी बनवाई नवाब आसिफुद्दौला ने। और उस कोठी को बनवाने के पीछे नवाब की सिर्फ एक हसरत होती थी कि वो गोरी मेमो के साथ नाच सके। हालांकि उस समय नवाब का वजन इतना ज्यादा हो गया था कि बामुश्किल वो खड़े हो पाते थे, लेकिन उनकी एक हसरत थी कि वो नाच सके। हालांकि उसके बाद वो ऊपर बैठकर बुर्ज पर रात में हाका लगाकर, और वहां पर आसपास जंगल हुआ करते थे तो नवाब बैठकर शिकार किया करते थे, और उनकी उस बीबियापुर कोठी में अंग्रेज और गोरी मेमो के साथ नाचने का सपना सपना ही रह गया। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी दिलचस्प चीज और है
जी,
कि नवाब शुजाउद्दौला जो फैजाबाद से पहले अवध और इन सारे जो टेरिटरी है इसका पूरा गवर्न करते थे, तो आसिफुद्दौला के बाद नवाब शहादत अली उनकी बीबियापुर कोठी में ही अंग्रेजों ने जब अवध पर कब्जा कर लिया तो वहीं पर बीबियापुर कोठी में उनकी ताजपोशी की गई। और उस बीबियापुर कोठी का इस्तेमाल जो आसिफुद्दौला ने अपने शौक कर के लिए किया था, उसका इस्तेमाल अंग्रेजों ने नवाबों की ताजपोशी के लिए किया।
बड़ी रोचक कथा है ये तो, कि नवाब जो थे आसिफुद्दौला वो बॉलरूम डांसिंग की हसरत ही रखते रहे।
नवाब आसिफुद्दौला या लखनऊ के नवाबों की बात करिए तो लखनऊ की नवाबियत या लखनऊ के नवाब यूं ही नहीं थे।
आपकी इस जानकारी के लिए अंशुमान जी बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत धन्यवाद।